हरे कृष्ण। तो भक्ति के छह लक्षणों की चर्चा चल रही है। पहले लक्षण की चर्चा हम कर चुके हैं, कौन सा था वो? क्लेश अग्नि, जो समस्त क्लेशों का विनाश करती है भक्ति। और किन प्रकार के क्लेशों का नाश करती है भक्ति? सारे भौतिक क्लेशों का। लेकिन भौतिक क्लेशों का विभाजन किस तरह हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में? सबसे पहले अविद्या, बीज, पाप, क्लेश। तो अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? बीज। बीज मतलब क्या है? कामनाएं, इच्छाएं, भोग करने की इच्छाएं, ठीक है। फिर इच्छाओं से क्या उत्पन्न होता है? कार्य। वो कौन सा कार्य है? पाप है। तो पाप के फल स्वरूप क्या होता है? क्लेश आता है। तो हमने देखा है कि अविद्या, बीज और पाप तीनों ही नष्ट हो सकते हैं भक्ति से। और पाप का भी विभाजन किया हुआ है। पाप का कैसा? अप्रारब्ध और प्रारब्ध, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं भक्ति करने मात्र से। और प्रारब्ध के साथ साथ कौन सा पाप का एक फल जुड़ा हुआ है? कूट अप्रारब्ध के साथ है। ये है बीज। अप्रारब्ध कूटम बीजम प्रारब्ध, ठीक है ना? याद है ना, वो पिछली बार किया था। तो बीज और प्रारब्ध में अंतर क्या है? अभी जो हमने कहा ना, अप्रारब्ध कूटम बीजम और प्रारब्धम। प्रारब्ध की परिभाषा क्या है? प्रारब्ध क्या है? हाँ, जो फल इस जीवन में हमें भोगना है ना? और विशेष करके जो फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। परंतु परिभाषा है कि समस्त सार इस जीवन के लिए, इस जन्म के लिए, ठीक है। और बीज क्या है? बीज और प्रारब्ध में अंतर क्या है? हाँ, बीज भी वो क्लेश है जो इस जन्म में हम भोगने वाले हैं, परंतु वो अभी तक आया नहीं है, समय उसका आएगा इस जन्म में, परंतु भविष्य में आएगा, मृत्यु के पहले आ जाएगा। तो इसलिए बीज और प्रारब्ध को एक साथ ही जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अप्रारब्ध और कूटम। तो अप्रारब्ध क्या है? जो आने वाले जन्मों में हम पाप के फल भोगेंगे वो है अप्रारब्ध। बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो पाप के भी ये समस्त प्रकार, ये सब नष्ट हो जाते हैं भक्ति करने से। फिर दूसरे लक्षण की चर्चा की थी हमने। दूसरा लक्षण कौन सा था भक्ति का? शुभदा। शुभदा का मतलब क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली कौन है? कौन शुभारंभ करती है? भक्ति। भक्ति देवी समस्त कल्याण का शुभारंभ करती है। तो अगर कोई ऐसे कल्याण करने वाली वस्तु है या व्यक्ति है, तो कौन से चार लक्षण होने चाहिए बताइए। पहला लक्षण, जो सबका कल्याण करे, ऐसा नहीं कि केवल इनका करे, उनका नहीं करे, केवल इस देश के लोगों के लिए, इस कौम के लोगों के लिए, इस समाज के लोगों के लिए, ऐसा नहीं, सबके लिए कल्याण, सबका कल्याण करे। दूसरा लक्षण क्या है? सबको आकर्षित करे, यहां तक कि पशुओं को, पक्षियों को, प्राणियों को भी आकर्षित करे। तीसरा लक्षण समस्त अच्छे गुण क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं कृत्रिम रूप से या कैसे? सहज ही, स्वाभाविक रूप से सारे अच्छे गुण भक्त के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं भक्ति करने मात्र से। और चौथा गुण श्रेष्ठ श्रेणी का आनंद प्रदान करने वाली है भक्ति। तो आइए अभी इस विषय पे हम पहुंचे हैं। तो ये शुभदा के चौथे लक्षण की चर्चा हम आज से शुरू करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि तीन प्रकार के सुख इस भौतिक जगत में हैं। एक है भोग से उत्पन्न होने वाला सुख, दूसरा है निराकार ब्रह्म की उपासना से उत्पन्न होने वाला सुख, और तीसरा भक्ति से उत्पन्न होने वाला सुख। अब इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति से उत्पन्न होने वाला सुख। तो अभी यहां तंत्र शास्त्र से शिवजी अपने पत्नी सती को कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं जरा पढ़िएगा।
हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावना विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों के द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा मैं शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको न केवल भक्ति का आनंद मिलता है, वो तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ स्वाभाविक रूप से सहज ही उसे संसार का भोग भी मिल जाता है अगर वो चाहे तो, और ब्रह्मानंद भी मिल जाता है अगर वो चाहे तो। किसी भी तरह का जो किसी भी प्रकार की सिद्धि जो है वो भक्त को प्राप्त हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य निकलता है इससे?
भक्ति ही करनी
है।
हाँ,
मतलब भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो श्रेष्ठ वस्तु करने से निम्न श्रेणी के दो वस्तु स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्त को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, भक्ति करने मात्र से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भौतिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं और आध्यात्मिक जो सिद्धियां हैं जो निराकारवादी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति का आनंद श्रेष्ठ है क्योंकि वो शाश्वत है। जो भौतिक सुख है वो तो क्षणभंगुर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। है क्या दो राय है? भक्ति का सुख कैसा होता है? नहीं, क्षमा कीजिए, भौतिक सुख, ये संसार का सुख कैसे होता है? क्षणिक होता है। कोई श्लोक? दुखालयम अशाश्वतम, और तो कई श्लोक हैं ऐसे भगवद गीता के कि ये संसार ही दुख का आलय है। इसलिए यहां संसार के सुख का भोग करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये तो क्षणिक है ही, परंतु आद्यंतवंत कौन्तेय है ना, आदि अंतवंत है, इसकी शुरुआत भी है इसका अंत भी है, ऐसे गीता में भगवान कहते हैं। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। क्या मतलब है इसका, कोई बताएंगे? इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग में बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये कारण भी बताए हुए हैं, दो कारण बताए हैं, बताइए। आधा बताया आपने, सही बताया, परंतु आधा
है कि ये टेम्पररी
है। पहली बात, दुख योनय, दुख योनय दुख की योनि है, दुख का उद्गम है। जो भौतिक भोग है वो दुख का स्रोत है। तो अगर आपको दुख चाहिए तो खूब भोग कीजिए, खूब दुनिया का आनंद लीजिए, संसार का भोग कीजिए, फिर बहुत सारा दुख मिलेगा, क्योंकि यही भगवान ने नियम बनाया हुआ है प्रकृति में। और दूसरी बात है आदि अंतवंतः, शुरुआत भी होता है अंत भी होता है, इसलिए ये क्षणभंगुर है, टेम्पररी, अशाश्वत है। तो ये भौतिक भोग के दो लक्षण हैं। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि भौतिक संसार का भोग तो निम्न श्रेणी का है, परंतु हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है, भौतिक भोग भले ही अशाश्वत हो, परंतु निराकार ब्रह्म में जब हम लीन हो जाएंगे तो उस समय तो हम शाश्वत रूप से हम आध्यात्मिक जगत में रह जाएंगे। यहां तो कोई समस्या नहीं, भौतिक संसार के क्लेश नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तीन गुणों से हम परे हो गए हैं। तो आपका उत्तर क्या है इसमें? निराकार में लीन होना यह शाश्वत है या अशाश्वत है? अशाश्वत है। क्यों? ऐसा ठीक नहीं कि पुनः सृष्टि होने से, हाँ, हाँ, क्यों गिरना पड़ता है? बहुत अच्छा, पतंती भी ये बताए, एक शब्द बताए उस श्लोक का, भगवान की सेवा नहीं है इसलिए आनंद नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। और वो स्थिति, उसके पहले क्या बताया आपने? क्रिया नहीं है। जीव का स्वभाव ये नहीं है कि वो निष्क्रिय रहे, जीव का स्वभाव है क्रियाशील रहना। लेकिन किस कार्य में क्रियाशील रहना? नहीं, भगवान की सेवा करने में। भगवान की सेवा करने में जीव अगर क्रियाशील रहे तब वो इस श्रेष्ठ आनंद का अनुभव कर पाएगा। परंतु भगवान की सेवा की क्रियाओं को छोड़कर अगर वो निष्क्रिय बनना चाहे, निराकार ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए, तो फिर क्या होगा? वो अपने अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा। हालांकि निराकार ब्रह्म में स्थित होना ये तीन गुणों से परे हैं जो कि भौतिक हैं, और हालांकि उसे भौतिक क्लेशों से मुक्ति मिलेगी, परंतु ऐसे जीव को सच्चा आनंद नहीं मिलेगा, केवल भौतिक दुखों से राहत मिलेगी। माइनस, शून्य और प्लस, है ना, तीन बातें आप जानते हैं ना, माइनस, शून्य और प्लस। तो माइनस क्या है? जो जहां दुख ही दुख है वो क्या है? माइनस भौतिक भोग, भौतिक संसार माइनस है, क्योंकि यहां सब दुख ही है। और भक्ति का आनंद क्या है?
प्लस।
बीच में क्या है?
जीरो।
जीरो मतलब क्या है? भौतिक दुख नहीं है, माइनस नहीं है, परंतु प्लस भी नहीं है। भौतिक दुख नहीं है परंतु भक्ति का आनंद भी नहीं है। इसलिए जीव जीरो में भी स्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव जीरो नहीं है। इसलिए जीव को चाहिए प्लस ढूंढने के लिए, ऊपर की ओर जाए। तो निराकार ब्रह्म में भी लीन होना ये संभव नहीं है। जीव क्योंकि क्रियाशील है और जीव रस का स्वाद करना चाहता है, अर्थात अन्यों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, और ये संबंध, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये संबंध से जो आनंद मिलता है वो क्या कहलाता है? रस। तो रस का आस्वादन करना जीव का स्वभाव है, जीव का स्वरूप है, लेकिन निराकार में स्थित होने से ऐसे रस का आस्वादन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां तो केवल ऐसे एक जगह है, जीव बस एक अणु बन के है जीव, तो वहां कुछ नहीं है। तो अगर आपको बताया जाए, अगर आपके सामने कोई समझिए इंद्रदेव आए या कोई बड़े देवता आए, आपको हम वरदान देंगे। क्या वरदान देंगे? दो चीजों में से आपको चयन करना है। हम आपको 10 लाख साल की आयु दे सकते हैं, परंतु आपको एक ही कमरे के अंदर बैठना होगा, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले रहना होगा आपको 10 लाख साल। खूब पैसा मिलेगा आपको, बहुत सोना चांदी पैसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कोई साथ में नहीं। और दूसरा, आप जैसे हैं वैसे रहो, आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? क्यों, जल्दी मृत्यु होने पसंद है? जल्दी मृत्यु पसंद है क्यों? अरे 10, सोचिए गहराई से, 10 लाख साल की उम्र मिलेगी तो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? कोई संग नहीं मिलेगा, भक्तों के संग की बात तो दूर है, किसी का संग नहीं मिलेगा, मच्छर भी नहीं काटेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जब कोई संग नहीं मिलेगा, किसी के साथ दो बातें नहीं कर सकते हैं, थोड़े प्रेम के रस का आस्वादन नहीं कर सकते, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते, उस रस का भी स्वाद नहीं ले सकते, तो फिर 10 लाख साल रहने से क्या लाभ है? तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव निराकार ब्रह्म में जाके स्थित होता है, तो वहां कोई रस का आस्वादन नहीं होता है। तो वहां रह रह के जीव सोचता है क्या करे, बस ओम शांति, ऐसे ही है, ओम शांति शांति। लेकिन जीव का स्वभाव शांति नहीं है, जीव का स्वरूप क्या है? आनंद। वेदांत में कहा गया है आनंदमयोभ्यासात। किसी ने सुना है ये श्लोक वेदांत का? आनंदमयोभ्यासात, कि जीव या ब्रह्म का स्वरूप है आनंदित होना। लेकिन ये आनंद वहां नहीं मिल रहा है, वहां तो शांति मिल रही है, शांति जीरो है, शून्य, और आनंद प्लस है। शून्यवादी अलग बात है। शून्यवादी कौन है? बुद्धिस्ट लोग, बौद्ध, बौद्ध धर्म के लोग। उनका कहना क्या है? उनका कहना है सब कुछ शून्य है, मतलब जीव भी नहीं है, केवल जीव अपने आप को है ऐसे समझ रहा है, परंतु वो है नहीं। जब उसको मुक्ति हो जाएगी ना, जब वो ज्ञान आ जाएगा, तब वो समझ लेगा कि मैं हूं ही नहीं, तब कुछ है ही नहीं, ना संसार है, ना जीव है, ना कुछ। इसको शून्यवाद कहते हैं। एक माताजी बता रहे थे, अभी आई, वो भक्त बन रही हैं, अभी वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो उनकी प्रोफेसर उनको बता रही थी, ये बौद्ध धर्म फिलोसफी पढ़ती हैं वो कॉलेज में, तो प्रोफेसर उनको सुना रही थी कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो जब हमें ज्ञान हो जाता है, तो फिर हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता, जीव भी नहीं रहता। तो फिर ये माताजी ने, लड़की ने पूछा अपने प्रोफेसर से, अगर कुछ नहीं रहता, जीव भी नहीं रहता, तो वो सुख का अनुभव कौन करता है? उत्तर नहीं दे पाई, उत्तर है ही नहीं, कैसे देंगे? देखिए, है एक 18-19 साल की लड़की, लेकिन कितना सुंदर प्रश्न पूछा। अगर आप कहते हैं कि जीव है ही नहीं और ये दिव्य आनंद है, तो कौन अनुभव, कोई अनुभव करने वाला तो होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग प्रकार के दर्शन है, ये सब दोष से युक्त है। तो ये है शून्यवाद बौद्धों का, बौद्ध लोगों का दर्शन, और उससे एक कदम आगे बढ़कर है ये निर्विशेषवाद, जो एक ढका हुआ बौद्ध धर्म है। शिवजी सती से कहते हैं अन्य जगह में, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। वो कहते हैं कि हे पार्वती हे देवी, कलयुग में कलो ब्राह्मण मूर्तिना, मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होऊंगा और मेरा नाम क्या होगा वो श्लोक में नहीं कहा, लेकिन क्या होगा उनका नाम? शंकराचार्य। और मैं एक असत शास्त्र या एक झूठे विद्या का प्रचार करूंगा, झूठे ज्ञान का प्रचार करूंगा, जिसको क्या कहा जाएगा? मायावाद। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। और वास्तव में ये बौद्धम मतलब बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, प्रच्छन्नम ये ढका हुआ बौद्ध धर्म होगा। मतलब ये मायावाद, ये निर्विशेषवाद और शून्यवाद क्या है, फर्क क्या है? केवल शून्य और एक का। शून्यवाद कहते हैं सब कुछ शून्य है, मायावादी लोग कहते हैं सब कुछ एक है, और भक्त कहते हैं दो। फिर द्वैतवाद वैष्णव आते हैं कहते हैं नहीं, जीव और भगवान दो अलग हैं। तो इस प्रकार से शून्यवाद अलग, निर्विशेषवाद अलग है, और मायावाद इसका केवल एक ढका हुआ रूप है। तो निराकार में कोई भी जीव लंबे समय के लिए रह नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई रस का स्वाद नहीं होता है, वहां केवल अस्तित्व है, सत और चित है, लेकिन आनंद नहीं है। आप जानते हैं ना, जीव जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण का अंश होने के नाते जीव भी सच्चिदानंद है स्वरूप से, परंतु निराकार में रह के ये आनंद का साक्षात्कार नहीं होता, केवल सत और चित का होता है। सत मतलब शाश्वत अस्तित्व, चित मतलब आनंद से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, और आनंद मतलब आनंद से पूर्ण। तो इसलिए जीव जो है निराकार में भले ही लंबे समय तक रहे, कई सृष्टियों तक रहे, लाखों लाखों सृष्टियों तक रहे वहां पर, परंतु फिर भी ऐसे पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त करने की वजह से फिर से आ जाता है यहां पर। एक भागवत श्लोक है, कोई बताएंगे कौन सा भागवत श्लोक, जिसमें ये साबित करते हैं ब्रह्मा जी, आपको हिंट दे देते हैं। ये बताते हैं ब्रह्मा जी कि जीव का पतन निराकार से भी हो जाता है, निराकार ब्रह्म से भौतिक जगत में आ जाता है। कोई बताएंगे? परीक्षित आपने बताया, पतंती एक शब्द बताया उस श्लोक का, और अन्य शब्द? हाँ, पतंती अथह कौन सा है? और इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी यहां आगे लिखते हैं, थोड़ा सा अनुवाद है तात्पर्य, लेकिन श्लोक नहीं लिखते हैं प्रभुपाद जी यहां। येन्ये रविन दाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यदो अनादृत युष्मदंघयः। अब इसका अर्थ बताएंगे। यह अन्यः, हे प्रभु, जो अन्य है, जो आपके भक्त नहीं है, अरविंद अक्ष भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का एक नाम है अरविंदाक्ष, का मतलब क्या है बताइए? हाँ, कमल की तरह समान है अरविंद अक्ष, क्योंकि अक्ष मतलब आंखें, अरविंद मतलब कमल, तो कमल नयन या कमल लोचन, राजीव लोचन, ऐसे भगवान के अलग अलग नाम हैं। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन कीजिए, आपको लाखों नाम मिल जाएंगे। जैसे लेके आंख के कितने नाम हैं, अर्थ हैं बताइए? लोचन, नयन, अक्ष, नेत्र, नम पंकज नाभाय, है ना, पंकज नेत्राय, तो पंकज नेत्र। और कमल के कितने अलग अलग अर्थ हैं बताइए? पंकज, कमल, सरोज, कितने सारे हैं। तो इन दो का कॉम्बिनेशन कीजिए अलग अलग अलग, कितने नाम मिल जाएंगे आपको। तो भगवान के अनंत नाम है, उनके गुणों के द्वारा आते हैं। तो ये अरविंदाक्ष बहुत सुंदर नाम है भगवान का। तो हे अरविंदाक्ष, अन्य हैं जो आपके भक्त नहीं है, विमुक्त मानिनः, वो अपने आप को मुक्त समझते हैं। इसका मतलब क्या है? मुक्त समझते हैं मतलब क्या?
मतलब वो सोचते कि वो है पर वो असल में नहीं
है। नहीं है। हाँ, वो अपने आप को केवल मानते हैं कि हम मुक्त हैं। विमुक्त मानिनः त्वयि अस्तभावाद। अस्तभावाद मतलब जो दार्शनिक चिंतन से, मनोधर्म से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो कि गलत है। और ऐसे गलत निष्कर्ष पर पहुंचकर उनकी बुद्धि जो है वो अशुद्ध हो जाती है, अविशुद्ध बुद्धयः। और ये यहां तक हो जाता है इसके बावजूद कि इन्होंने आरुह्य कृच्छ्रेण बहुत तपस्या की है, बहुत कष्ट उठाया है। पदम परम पदम ततः, उनको लगता है कि हमने परम पद को प्राप्त कर लिया है। परम पद मतलब क्या है? सबसे ऊंचा पद, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हमने कर ली है। परंतु परंतु क्या? पतंति आरोही कृच्छ्रेण परम पदम ततः अनादृत युष्मत अंग्रयः पतंति अधः। पतंति मतलब गिर जाना, अधः मतलब नीचे, मतलब निराकार ब्रह्म में जो लीन है वहां से ऊपर से नीचे भौतिक जगत में गिर जाते हैं, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। अनादृत युष्मत अंग्रयः, अंग्री, अंग्री मतलब क्या है? अंग्री पाद पद्म। उसी प्रकार जैसे आंखों के साथ हमने अलग अलग शब्द लगाए थे, चरण, भगवान के चरणों से आप ऐसे अलग अलग शब्द लगाइए, अंग्री, अंग्री, चरण इत्यादि, कितने हैं ऐसे शब्द हैं। फिर कमल से और जोड़िए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए, देखिए कितने नाम हो जाते हैं भगवान के। पंकजांघ्री, मायापुर में पुजारी है ना नरसिंह देव के, जननी निवास प्रभु के भाई, नाम है पंकजांघ्री दास। तो अंघ्री मतलब भगवान के चरण कमल। और अनादृत, क्योंकि ये लोग जो भक्त नहीं हैं, ये भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं, अर्थात इनकी सेवा नहीं करते हैं, इसलिए इनका निराकार ब्रह्म जैसे उच्च गति की प्राप्ति होने के बावजूद पुनः पतन हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मानंद, निराकार का, निर्विशेष का जो आनंद है वो शाश्वत नहीं है, वो जीव को पूरा संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये श्रेष्ठ आनंद नहीं है। ठीक है। और फिर आगे चल के प्रभुपाद जी कहते हैं कि आइए देखते हैं कि योगियों के आनंद के बारे में क्या है। जो भोगी हैं उनका ज्ञान तो तुच्छ है ही, फिर जो ज्ञानी हैं उनके बारे में भी हम अभी सुन चुके हैं, निर्विशेषवादी। अब तीसरा है जो योगी है। जो योगी होते हैं, विशेष करके जो अष्टांग योग की पद्धति को स्वीकार करते हैं, उनको कौन से भौतिक फल प्राप्त होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? योग सिद्धि। ये सिद्धियां मतलब उनको ऐसी विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो कि इस संसार में लोग सोचते हैं कि ये जादू है, लेकिन ऐसे होता है। ऐसे अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन मूल रूप से अष्ट सिद्धि कहते हैं, आठ प्रकार की सिद्धियां हैं। अच्छा, अभी आपके ग्रंथ देखिए और बताइए कौन से सिद्धियां हैं। पहले सिद्धि का वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, कौन सा है? अणिमा सिद्धि। अच्छा, अणिमा सिद्धि का वर्णन कैसे कर रहे हैं प्रभुपाद जी? पत्थर के भीतर भी प्रविष्ट हो सकता है। क्या ये संभव है हमारे लिए? हम ऐसे सोच भी सकते हैं ये पत्थर के भीतर चले जाना? परंतु आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं?
आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा भी हम पत्थर के प्रविष्ट
होते हैं। अभी आजकल लोगों ने सब टनल वगैरह बनाए हुए हैं ना, अब पहाड़ को तोड़कर बीच उन्होंने रास्ते बनाए हैं रेल पटरी के लिए। तो वही सिद्धियां, वही चीजें जो पहले योग सिद्धि से प्राप्त होती थी, आज विज्ञान के द्वारा वही चीज किया जा सकता है, पत्थर में प्रवेश करना, ऐसे प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान है, इसके माध्यम से ये अणिमा सिद्धि भी लोग प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर के भीतर से भी जा रहे हैं, पत्थर को तोड़ के अंदर से निकल रहे हैं। परंतु अणिमा सिद्धि को करके जीव अपना जो योगी है वो आसानी से पत्थर में प्रविष्ट हो सकता है। अब ये तो हमें पता नहीं कि कैसा उसका स्वरूप होता है, परंतु वो प्रवेश तो कर सकता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, या तो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पत्थर को भी तोड़ सकता है। और फिर दूसरा, दूसरी सिद्धि कौन सी है? एक योग सिद्धि है जिसमें क्या होता है, हाँ महिमा, इसमें क्या होता है? यहाँ हालांकि प्रभुपाद ने कहा नहीं यहाँ पर महिमा है, हल्का हो जाता है, हल्का होकर क्या हो जाता है, पानी में तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है। एक बार एक गांव का लड़का था और वो हिमालय में गया साधु बनने के लिए। साधु बन गया, कई साल तपस्या की वहां पर, किसी बाबा से कुछ सीखा, योगी बन गया और फिर से अपने गांव में लौट के आया। और गांव में आके उसने घोषणा की कि मैं पानी पे चल सकता हूं। तो सारे लोगों को आश्चर्य हो गया कि अरे ये पानी पे चल सकते हैं? तो हाँ, अभी मैं इसका प्रदर्शन करूंगा, तो आप सब आइए नदी के तट पर दोपहर में ठीक 4 बजे। तो सब लोग वहां एकत्र हुए, बात फैल गई सब जगह, सब लोग आए वहां, सारे गांव के लोग, कि लड़का भी लौट के आया है इतने सालों बाद, अब ये पानी पर चल के दिखाएगा। तो सब लोग आए, खड़े हो गए, और वास्तव में ये साधु जो अभी साधु बन गया था, ये लड़का बड़ा हो गया था, तो पानी के ऊपर चलने लगा। तो पानी के ऊपर चल के नदी के उस पार गया और फिर से इस पार चले आया, और हाहाकार मच गया वहां गांव के लोगों में। सब लोगों ने जो है दंडवत किया, महाराज भगवान ये वो सब शुरू हो गया, जैसे होता है ना, किसी ने थोड़ा सा चमत्कार दिखा लिया तो उसको भगवान ही बना डालते हैं, है ना, तो ये भी भगवान हो गया। और फिर एक आदमी वहां था, सबके सामने उसने कहा कि आप की ये जो ये कला है इसकी कीमत केवल 25 पैसे है, 25 पैसे जितना है आपका बस मूल्य, कुछ ऐसे आश्चर्यजनक नहीं है। अरे क्या मतलब, मैं पानी के ऊपर चल के दिखाया हूं, उस पार गया, इस पार आ गया वापस। उन्होंने पूछा कि आपको कितने साल लगे ये सीखने के लिए? 12 साल हमने तपस्या की, कम नहीं, ठीक है। तो जो आपने 12 साल में तपस्या करके प्राप्त किया, वो मैं तो 2 मिनट में काम करके कमा सकता हूं 25 पैसे, फिर मैं एक माझी को देके नौके में बैठकर उस पार जा सकता हूँ, इस पार आ सकता हूँ। अगर केवल पानी के ऊपर तैरना है, चलना है, तो इतना 12 साल करने की क्या तपस्या, क्या बात है ना? 25 पैसे कमा लिए, माझी को दे दिया, बोट में बैठ गए, चले गए, आ गए। तो इस प्रकार से ये योग सिद्धि से क्या होता है कि व्यक्ति अपने पथ से दूर चले जाता है, वो अटक जाता है उसमें, वो जानता नहीं है कि मेरे योग पद्धति जो है, योग का मार्ग है, वो तो भगवान को प्राप्त करना है। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, कि योग अष्टांग योग का उद्देश्य है कि जो हृदय में स्थित भगवान है उनका दर्शन करना, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। परंतु भगवान के प्रति आकर्षित होने के बजाय जो योग मार्ग में सिद्धियां अपने आप जो चली आती हैं, उनसे प्रभावित होकर अगर व्यक्ति उलझ जाए तो वो फिर भूल जाएगा अपने उद्देश्य को, भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा, इन्हीं में अटक जाएगा फिर वो। इसलिए ये सब, क्योंकि जैसे ये सिद्धि प्राप्त होंगी तो लोग वाहवाकार करेंगे, प्रतिष्ठा उसको आ जाएगी, उसको भगवान कहेंगे, बड़ा साधु कहेंगे, फिर वो प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा, भगवान को भूल जाएगा। इसलिए ये सिद्धियां जो है बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है इनसे कि आदमी अगर बुद्धिमान नहीं है बहुत, तो वो डावाडोल हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये सिद्धि है जिसमें व्यक्ति हवा में या पानी में तैर सकता है। प्रभुपाद ये बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान के कारण भी ये संभव हो गया है। आजकल हवाई जहाज हैं, रॉकेट हैं, जिसमें व्यक्ति उड़ के भी जा सकता है। तो तीसरी सिद्धि नकीमा। लेकिन इसके पहले प्रभुपाद जी आगे देखिए यहां बताते हैं कि एक जर्मन विद्वान थे, वो यहां पर आए भारत में और वो आध्यात्मिक जीवन की खोज में थे। तो उन्होंने सारे बहुत सारे योगियों से मुलाकात की और योगियों की सिद्धि वगैरह देखने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी ये सिद्धि ये लोग कर रहे हैं, ये तो आधुनिक विज्ञान ने भी प्राप्त किया है। तो चाहे भौतिक विज्ञान हो या योग सिद्धि हो, दोनों ही ने एक ही उद्देश्य प्राप्त किया है। इसलिए मुझे योग सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे योग मार्ग नहीं चाहिए। फिर उन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है कि योग की सिद्धियां जो हैं, वो आधुनिक विज्ञान से भी प्राप्त होती है। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे सूक्ष्म योग सिद्धियां भी हैं जो आधुनिक विज्ञान नहीं कर पा रहा है आज भी, लेकिन फिर भी ये सिद्धियां भौतिक होती हैं। आगे कौन सी सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी? लघिमा। तो लघिमा का क्या वर्णन है?
जो भी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है, यह सिद्धि लघिमा कहलाती है।
सोचिए ऐसा वैज्ञानिक कर सकते हैं, सूरज के किरण पे बैठ के सूरज तक पहुंच जाना।
चंद्र को छू सकता है,
वो आगे वाली सिद्धि है, वो ये नहीं, वो प्राप्ति सिद्धि है। लेकिन लघिमा में वो सूरज की किरण के ऊपर अपने आप को सवार करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यहां तक कि सूर्य लोक में भी जा सकता है। अभी ये तो संभव नहीं है, सोच भी नहीं सकते हमारे वैज्ञानिक ऐसे चीजों के बारे में है? और आने वाली और सिद्धि, अगली सिद्धि कौन सी है? चौथा नहीं, प्राप्ति है ना। प्राप्ति का क्या वर्णन है? अभी बताया आपने, चंद्रमा को छू सकता है। मतलब चांद कहाँ है? बहुत दूर है ना, केवल अपने हाथ को, उंगली को आगे बढ़ा के चांद को छू सकता है। सच है ये, ऐसे लोग कर सकते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि जब वो कई साल पहले एक कुंभ मेला में गए थे, तो वो एक महिला से मिले, बूढ़ी महिला थी, इतनी बूढ़ी नहीं फिर भी, लेकिन वो कह रही थी कि एक बार मैं कुंभ मेला के समय मैं पहले मंजिल पर थी एक आश्रम में, और रास्ते से कई साधु वगैरह गुजर रहे थे, और ये महिला माताजी के हाथ में कोई फल था, तो कई फल थे, वो कुछ काट रही होंगी या कुछ कर रही होंगी। तो पहले मंजिल जो है वो काफी ऊंचा था सड़क से, जैसे ही वो कुछ फल को धो रही थी या काट रही थी, उन्होंने देखा कि अचानक उनके सामने एक हाथ आया। सोचे ये हाथ कहां से आ गया, तो उन्होंने देखा तो साधु नीचे खड़ा है ना, उसने हाथ ऊपर किए थे, तो उनका साधु का हाथ जो है सीधे उसने ऊपर फैला दिया और पहले मंजिल तक पहुंच गया साधु का हाथ। तो ये माता जी का क्या हुआ? स्वाभाविक है, छोड़ दिया सब वहीं पे, माता जी का सर चकरा गया है। परंतु ऐसे होता है, ये सिद्धि है, परंतु भक्त लोग इन चीजों से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि भक्त लोग जानते हैं कि ये सब जादू टोना, जादू वगैरह करना है, इससे क्या है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक जादूगर आए, जादूगर ने कहा, कोई जानता है? हाँ बताओ, जादूगर ने क्या कहा?
कर सकता हूँ, उसको वापस डिसअपीयर कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा तुम ये कर सकते हो, क्या तुम जन्म मुक्ति को डिसअपीयर कर सकते हो? तो उन श्लोक ने किए तो मैं नहीं कर सकता, उन्हें मैं कर सकता हूँ।
बहुत अच्छा। तो ये जादूगर ने कहा कि मैं ये चीज गायब कर सकता हूँ, वो चीज गायब कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मृत्यु को गायब करा सकते हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब करा सकते हो? नहीं, उस चीज के लिए तो मैं आपके पास आऊंगा। तो जो भक्त होता है वो सबसे बड़ा जादूगर होता है। उन चीजों को वो गायब करा सकता है जो कि कोई भी जादूगर नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा योगी भी नहीं कर सकता है। न्यू वृंदावन हमारा जो केंद्र है इस्कॉन में, वहां एक बार एक योगी आए थे। और वह योगी ने क्या किया कि एक गाड़ी थी और गाड़ी को उन्होंने एक रस्सी बांधा हुआ था और रस्सी उन्होंने अपने दांतों में पकड़ लिया और गाड़ी उनको कहा गाड़ी चलाओ, एक्सेलरेटर दबाओ, और हूं चलाने जा रहे लेकिन गाड़ी को हिला नहीं पाए क्योंकि वो पकड़ के रखा था। यह है योग सिद्धि, तरह तरह की योग सिद्धियां। परंतु भक्त लोग इससे बिल्कुल आकर्षित नहीं हो। ठीक है, क्या है इसमें? ठीक है, गाड़ी को रोके रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन सफल हो गया। फिर जो उसको जन्म तो लेना पड़ेगा फिर से अगली बार। ये सफलता नहीं है कि हम किसी दांतों में रस्सी पकड़ के गाड़ी को रोक के रखे हैं। हालांकि साधारण जनसाधारण के लिए ये बहुत बड़ी चमत्कार की बात है कि ऐसे कोई कर भी सकता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे चीजों का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। इसलिए भक्तों के ऐसे चमत्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। न प्राप्त करने में रुचि है, न देखने में रुचि है। जनसाधारण बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसे वाह वाह नहीं करते। इसे कौन सी बड़ी बात है? फिर भी जानकारी के लिए हमें जानना चाहिए कि ये सारी सिद्धियां हैं, ये सत्य है कि कोई व्यक्ति अगर इस पथ पर चले तो ऐसे सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो यह है सिद्धि प्राप्ति, प्राप्ति सिद्धि। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते थे प्राप्ति सिद्धि का। वो कहते थे कि ऐसे योगी होते हैं जो कलकत्ता में बैठ के आपको काबुल का जो अनार है वो अनार के पेड़ से तोड़कर आपको दे सकते हैं बैठे बैठे। अगर आपके साथ कलकत्ता में बैठे हैं, अपना हाथ बाहर करेंगे, सीधे काबुल पहुंचकर, काबुल पता है ना कहाँ है? अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में अच्छे अनार वगैरह मिलते हैं ना, तो वहां सीधे पहुंचकर वो वहां के किसी पेड़ से अनार का फल तोड़ के आपको दे सकता है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते थे, ये है प्राप्ति सिद्धि। तो ऐसी सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे कई उदाहरण देते थे कि उनके पिताजी के समय कैसे योगी थे। गांव में है। विभूति तो ऐसे जादू से हमें कोई संबंध है कि नहीं? नहीं, थोड़े श्रद्धा से कहना होगा नहीं है। है ना, थोड़ा आकर्षण है सिद्धियों के प्रति, सिद्धियां प्राप्त करनी है आपको, प्राप्ति सिद्धि वगैरह। चांद को छूना है?
नहीं।
प्रभुपाद जी कहा करते थे कि उनके पिताजी के एक पहचान के योगी थे जो हर रोज ऋषिकेश में या हरिद्वार में गंगा में प्रवेश करते थे और पानी के लहरों से सीधे आते थे कलकत्ता, वहां भी स्नान करके वापस चले जाते थे रोज। जैसे लोग मथुरा टू वृंदावन अप डाउन करते हैं ना, या बंबई में लोग ट्रेन में अपने घर से दफ्तर जाते हैं आते हैं, वैसे ये ऋषिकेश से कलकत्ता आना जाना उनका रहता था। पानी के अंदर चले गए, बस आ गए। तो ये सब अलग अलग सिद्धियां हैं आने जाने के लिए। और क्या सिद्धियां? पांचवें प्रकार की सिद्धि बताइए, ईशिता। ईशिता मतलब क्या है? पढ़िए।
लोग की सृष्टि और सत्ता
किसी भी लोक की सृष्टि और संहार करना। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप रामायण से महाभारत से कि किसने ऐसे किया, कौन से मुनि थे? विश्वामित्र मुनि। क्या किया उन्होंने? स्वर्ग निर्माण किया। किन के लिए किया? क्या था प्रसंग, हुआ क्या? त्रिशंकु राजा थे। हाँ, तो क्या किया त्रिशंकु ने? हाँ बताइए, कौन बताएंगे? त्रिशंकु राजा की कथा नहीं मालूम? अभी कोई व्यक्ति को कहना है अरे ये तो त्रिशंकु है, मतलब क्या है? ना इधर का है ना उधर का है। तो क्या हुआ त्रिशंकु राजा से बेचारे, उनको क्यों ऐसे बदनाम किया जा रहा है? बहुत अच्छा, करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये जो राजा है ये सदेह जाना चाहता था, इसी देह में स्वर्ग लोक जाना चाहता था, और विश्वामित्र ने कह दिया ठीक है तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो अपने योग के शक्ति के बल पर, सिद्धि के बल पर उनको भेज दिया वन वे टिकट देकर। और ये ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, इंद्र ने देखा अरे ये कौन आ रहा है यहाँ पर, ऐसे कैसे आ रहा है बिना टिकट का, हमने टिकट तो इश्यू नहीं किया है। टिकट देना मतलब क्या? नहीं, पुण्य नहीं है इसके, कौन जा सकता है स्वर्ग लोक में? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह, है ना? तो स्वर्ग लोक जो ऊपर के लोक हैं उनको पुण्य कृताम लोकान कहते हैं। वो लोक हैं जिनको केवल वो लोग जा सकते हैं जहां जिन्होंने पुण्य किए हैं, पुण्य कृताम। तो पुण्य की पूंजी जब बढ़ती है पर्याप्त मात्रा में तब ही व्यक्ति स्वर्ग लोक को जा सकता है। तो इंद्र ने देखा अपने डायरी में देखा कि अरे इसके नाम में तो इतने सारे पुण्य नहीं है फिर भी ये स्वर्ग लोक कैसे आ रहा है, तो इसको बाहर भेजना होगा, वापस भेजना होगा। जैसे अगर किसी देश में कोई बिना वीजा के आदमी प्रवेश करता है तो वहां की पुलिस क्या करती है? वापस भेज देती है। तो इसी प्रकार ने देखा इसका वीजा बराबर ठीक नहीं है, इसको वापस भेजो। तो बेचारे त्रिशंकु फिर से आए रिटर्न जर्नी, और फिर आए और कहने लगे हे विश्वामित्र देखिए देखिए क्या हो गया क्या हो गया। तो शंकु ने कहा अरे ये कैसे, फिर से भेज दिया ऊपर इंद्र ने, फिर से भेज दिया ऐसे। फिर उनको विश्वामित्र ने कहा कि जहां हो वहीं पे रहो, और उनके लिए फिर सब कुछ बना दिया, स्व एक लोक बना दिया, और बहुत कुछ आके बनाने वाले थे, सारा ब्रह्मांड ही बनाने वाले थे वो। फिर देवताओं ने आके कहा नहीं नहीं ऐसा करोगे तो सारा उत्पात हो जाएगा, सारा सिस्टम ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से विश्वामित्र भी बड़े योगी थे, उनके पास बहुत सिद्धियां थी, लेकिन सिद्धियां भी होने के बावजूद क्या हुआ, अटक गए अलग अलग रास्तों पे। कभी काम के रास्ते पे, कभी क्रोध के रास्ते पे, कभी अहंकार के रास्ते पे, अंततः वो पहुंच गए ब्रह्म ऋषि के पद में जो वो चाहते थे। वशिष्ठ ऋषि का मुकाबला करना चाहते थे, वशिष्ठ ऋषि भी ब्रह्म ऋषि थे, और विश्वामित्र मुनि ने देखा था कि इनका ब्रह्म तेज क्या है, कितनी शक्ति है इनकी, तो मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण है, और इन्होंने केवल हुंकार से मेरे सारे सेना का नाश कर दिया, तो ये मेरे लिए तो असहनीय है, तो मैं भी ब्राह्मण बनूंगा और ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो अपने राज्य को त्याग कर विश्वामित्र ने तपस्या करना शुरू किया, और उसके फलस्वरूप उनको ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो ये है इशिता। आगे कौन सी सिद्धि है? वशिता। वशिता मतलब क्या है? वश में करना, अन्यों को वश में कर लेना, हिप्नोटिज्म। हमारे राजनेता यही चाहते हैं, सब कोई कह के अपने लिए मत दे दो और फिर, है ना? लेकिन लोग करते हैं ऐसे, लोगों को मन को कंट्रोल कर लेते हैं, विशेष करके जो कमजोर मन है उनको वश में कर लेते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं तीव्रता से फिर उनके लिए उनको ऐसे वश में नहीं किया जा सकता। अच्छा, आगे सातवां, सातवीं सिद्धि प्राकाम्य। वशिता हो गया, प्राकाम्य सिद्धि क्या है? जादू, तरह तरह के जादू। जैसे आंखों में से पानी निकालना, फिर पानी को फिर से आंख में डाल देना, ऐसे विचित्र चीजें होती हैं। और आठवां कामावसायिता, क्या है ये कामावसायिता? ऐसे जो प्रकृति के विरुद्ध भी कोई कार्य किए जा सकते हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, मतलब जो असंभव है प्राय उसको कर देना। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति योग पद्धति के योग के मार्ग में जाए तो ऐसे सिद्धियां उसको प्राप्त हो सकती हैं। परंतु भगवान के भक्त जो होते हैं ऐसे सिद्धियों के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते और इनको तुच्छ मानते हैं, क्योंकि इतना सब प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटता नहीं है। और आगे फिर भक्ति विनोद ठाकुर की बात कहते हैं कि जो भौतिक विद्या की प्रगति है वो व्यक्ति को और मूर्ख बनाता है। जीवे करे गाधा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो विज्ञान है, ज्यादा आधुनिक ज्ञान है, व्यक्ति को मूढ़ बना देता है। क्यों मूढ़ बना देता है? क्योंकि वो व्यक्ति को भुला देता है कि मेरा स्वरूप क्या है और मुझे करना क्या है। क्योंकि वो जानते नहीं है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं जानते हैं स्पष्ट रूप से। केवल वही व्यक्ति जान सकता है स्पष्ट रूप से जो बहुत भाग्यशाली है। और उसका भाग्य किस रूप में उदित होता है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हाँ, केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही समझ सकते हैं कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, वो भाग्य किस रूप में ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है। वो तो है वैष्णव संघ, करेक्ट। और विशेष करके सद्गुरु और वैष्णव संघ जब प्राप्त होते हैं तो इसके माध्यम से उसे ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वैष्णव संघ से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वैष्णव संघ के बिना तो ये संभव नहीं है। तो इन लोगों को वैष्णव संघ नहीं मिला है, इसलिए उनको पता नहीं कि जीवन का स्पष्ट रूप से उद्देश्य क्या है। एक कुछ उनको मालूम है कि हाँ भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन भगवान कौन है, कैसे है और उनकी प्राप्ति कैसे की जाती है उनको पता नहीं। तो अलग अलग धारणाएं रहती हैं, कोई सोचता है निराकार है, कोई सोचता है ये देवी है, कोई सोचता है वो है, अलग 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 उनके मत रहते हैं। तो वैष्णवों के संग के अभाव से उनको जीवन के परम लक्ष्य की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो अपने अपने मनगढ़ंत ढंग से अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर उस पथ पर चलते हैं। और कोई होते हैं भले वो उनको पुस्तकीय ज्ञान भी हो परंतु हृदय अभी तक अशुद्ध है। अभी देखिए भक्तों में भी ऐसे होता है कभी कभी, है ना, हम सब जानते हैं, हालांकि हमें भी पता है कि कृष्ण भक्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन कभी कभी हम लोग भी ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि हमारे जीवन के इस उद्देश्य से मिलता जुलता नहीं है, करते हैं ना कभी कभी हम लोग। तो हम लोग जानते हुए भी ऐसा करते हैं, तो जो लोग नहीं जानते स्वाभाविक है कि वो करेंगे ही ऐसे गलत काम या गलत रास्ते पे चले जाएंगे। अगर अगर उनकी सुकृति है उतनी तो आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो आगे कभी आएगी, क्योंकि इस वैष्णव के मिलके उनकी सुकृति की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अगर इस जन्म में वो भक्त नहीं बना तो वैष्णवों को मिलकर अभी थोड़ा कमा लिया है ना उसने सुकृति, अज्ञात सुकृति कमा लिया है थोड़ा बहुत, और अगले जन्म में हो तो और भी वैष्णवों से मिलेगा, फिर उसके बाद अगले जन्म में और किसी को मिलेगा, ऐसे अनेक जन्मों के बाद फिर वो भक्ति में आ जाएगा। अगर उसकी सुकृति की पूंजी उतनी है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। फिर आगे रूप गोस्वामी प्रहलाद महाराज के श्लोक का वर्णन करते हैं हरि भक्ति सुधोदय में, कि कृष्ण भक्ति करने से चारों जो पुरुषार्थ हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। पुरुषार्थ मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं क्या है ये पुरुषार्थ शब्द का अर्थ के मतलब क्या है? नहीं, क्या पुरुषार्थ क्या चीज होता है क्या? हाँ, जो प्राप्त अर्थ मतलब जो हित की बात है, जो उद्देश्य है, पुरुष मतलब लोगों के लिए, तो मनुष्य समाज के लिए प्राप्त करने लायक जो उद्देश्य है वो चार प्रकार के माने जाते हैं साधारणतः। तो कौन से हैं अब बताइए?
धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म क्या है, जो इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष में धर्म क्या चीज है? ना, कर्म कांड। बहुत अच्छा, ये भगवान की भक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसे धर्म से हम भोग नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ये धार्मिकता करते हैं, जो इस प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, ये कर्मकांडीय धर्म है, जो कि इस कारण किया जाता है कि किस उसके माध्यम से कुछ अर्थ की प्राप्ति हो। अर्थ मतलब संपत्ति, समृद्धि। और ऐसे धन संपत्ति को प्राप्त करने से व्यक्ति क्या चाहता है?
काम,
उसको फिर इंद्रिय तृप्ति में इस्तेमाल करता है। ये बाद में के पास बहुत धन हो जाता है तो होटल में जाएगा, सिनेमा में जाएगा, यहां करेगा, वो करेगा, फिर काम और सब। ये धर्म अर्थ काम करने के बाद जब अनेक जन्मों के बाद उसकी बुद्धि थोड़े बहुत ठिकाने आ जाती है, सोचते अरे इतना भोग करने से, इंद्रिय तृप्ति करने से मुझे क्या मिला है? केवल दुख ही मिला, दुख के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तो मैं तंग आ गया हूं इस दुनिया से, इस दुनिया के भोग से, अर्थ से तंग आ गया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्त होना चाहता हूं। और फिर वो मोक्ष की कामना करता है। परंतु वैष्णव शास्त्रों में बताया गया है, ये तो चार पुरुषार्थ रहे, परंतु पंचम पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ, पांचवा पुरुषार्थ वो क्या है? भक्ति। कृष्ण भक्ति ये पंचम पुरुषार्थ है, पांचवा पुरुषार्थ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, कोई पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं?
हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धन, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है।
प्रहलाद तो केवल अपने भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में वो ये भी कह रहे हैं कि भक्ति करने मात्र से सहज ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करने वाली है। तो इस पॉइंट पर आपके ग्रंथ में आप मार्क कीजिएगा, वास्तव में इस पॉइंट पर शुभदा की चर्चा समाप्त होती है। हालांकि प्रभुपाद जी ने जो शीर्षक लिखे हैं उन्होंने थोड़ा अलग कैटेगरी बनाया हुआ है, लेकिन बात एक ही है। तो जहां प्रहलाद महाराज अपने श्लोक को समाप्त करते हैं वहां शुभदा की चर्चा समाप्त होती है। ठीक है, वास्तव में शुभदा और अगला जो गुण है तीसरे नंबर का मोक्ष लघुताकृत, उसमें थोड़े कॉमन चीजें हैं, परंतु यहां शुभदा की चर्चा समाप्त होती है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। अर्थ, अर्थ मतलब जो हित के लिए है या जो उद्देश्य है।
पुरुष का उद्देश्य
क्या? उद्देश्य मतलब नहीं, जीवन के उद्देश्य। मनुष्य समाज में मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य, लक्ष्य, प्राप्त करने योग्य क्या चीजें हैं, गोल।
अगर हम पुरुषार्थ कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, तो हम इसको एज ए स्लो प्रोसेस समझेंगे, या फिर इसको पुरुषार्थ कहना है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसी के पीछे भागेंगे।
भागते हैं ज्यादातर, इसलिए भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। इन चीजों की भी आवश्यकता है, जहां तक कि अर्थ है, अर्थ के बिना तो हम रह नहीं सकते, और थोड़ी बहुत तो इंद्र तृप्ति चाहिए ही चाहिए। भक्ति मार्ग में हम ये नहीं कहते कि इंद्र तृप्ति को शून्य बनाइए, कहते हैं, क्या कहते हैं फिर हम, उसको कृष्ण से जोड़िए। क्योंकि हमें सब एक उदाहरण देते हैं कि हमें अच्छी चीजें खाना पसंद है, तो क्या हम कहते हैं कि अच्छी चीजें खाइए ही मत, खाना बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। ठीक है ना, तो हम अच्छी आवाजें सुनना चाहते हैं तो हम कहते हैं इंद्र तृप्ति है, अच्छी आवाजें सुनना बंद करो, करते हैं नहीं, क्या करते हैं हम लोग? कीर्तन, भगवान के मधुर नामों का कीर्तन सुनते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति शून्य बनाने की बात हम नहीं कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति को भगवान से जोड़ने की बात कह रहे हैं, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की बात कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो लोग सोचते हैं संसार में, साधारणतः जिसके पीछे लोग जाते हैं संसार में, ये चार चीजें जो करने लायक जो कार्य है उनके लिए साधारण लोग। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसके पीछे जाते हैं? पंचम पुरुषार्थ, जो कि भक्ति है। तो अब से यहां से अच्छा, तो जब शुभदा का जो चौथा गुण था कि ये श्रेष्ठ श्रेणी का आनंद प्रदान करने वाली है, तो इसमें हम देख चुके हैं कि भक्ति जो है वो तीनों भौतिक सुख ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है, और जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको ये अन्य प्रकार के सुख और सिद्धियां भी है खुद ब खुद प्राप्त हो जाती हैं, हालांकि वो उनके लिए परवाह नहीं करता है। अच्छा, तीसरा है, तीसरा लक्षण मोक्ष लघुताकृत। ये क्या है मोक्ष लघुताकृत? भक्ति क्या चीज है? मोक्ष को लघु कर देने वाली, बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या है कि भक्त क्या सोचता है मोक्ष के बारे में? मोक्ष भी तुच्छ है, मोक्ष को तुच्छ मानता है, प्राप्त करने योग्य नहीं मानता है। और प्रभुपाद जी यहां तुलना देते हैं, बताइए क्या तुलना है, उपमा है यहां पर, बूंद की क्या तुलना है?
कुछ भावों में सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है।
बस
अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म अर्थ काम का मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है।
क्यों ठुकरा सकता है? क्योंकि जो सुख का अनुभव भक्त कर रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। भक्ति का एक बूंद अन्य प्रकार के सुख के समुद्र के बराबर है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। भक्ति का बूंद, एक बूंद इतना श्रेष्ठ है कि इसकी तुलना अन्य सुख के समुद्र से भी नहीं की जा सकती। एक बूंद में और समुद्र में कितना अंतर है मात्रा में? बहुत बड़ा अंतर है। परंतु गुण में देखिए कितना अंतर है। भक्ति इतना श्रेष्ठ है कि दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए भक्त इन अन्य प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। और किन का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर? खोला बेचा श्रीधर। कौन बताएंगे संक्षेप में खोला बेचा श्रीधर की कथा? बताइए कौन बताएंगे? नहीं, बिना पढ़े हुए संक्षेप में। कोला बेचा, केला बेचने वाला, कोला बेचा श्रीधर। इनका नाम था श्रीधर क्योंकि केला बेचता था, तो नाम हो गया कोला बेचा श्रीधर। था वो बहुत गरीब, इतना गरीब था। चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, तो कोला बेचा श्रीधर के पास जाते थे और थोड़ा उनको छेड़ते थे। अरे श्रीधर, तुम दिन भर हरी हरी करते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण भक्ति करने से मिला क्या तुम्हें? देखो तुम्हारे कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहनते, घर में कोई बर्तन नहीं तुम्हारे पास, और रहने का घर देखो, इस छत में कितने छेद हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है बरसात का, और वहां देखो सामने चंडी काली दुर्गा के कितने भक्त हैं, वो देखो कितने मजे से जी रहे हैं, उनके रेशम के कपड़े पहने हुए हैं, और देखो उनका भोजन कैसे आराम से खा रहे हैं, जी रहे हैं, ठाठ से रहते हैं। तो क्या दिया है तुम्हारे हरि ने तुमको? क्यों करते हो ये कृष्ण भक्ति, छोड़ दो। तो कोलावेच श्रीधर ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि जो हरेक के भाग्य में लिखा है, चाहे वो रंक हो या राजा, हरेक को उतना ही भोग मिलना है, उतना ही अधिकार सबका है जितना कि उसका प्रारब्ध है। तो इसलिए मैं क्यों बिना वजह इसके लिए प्रयास करूं? जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं उससे संतुष्ट हूं। ऐसा नहीं कि राजा अपनी जगह में ज्यादा संतुष्ट है। और इस प्रकार से चर्चा चर्चा चलती रहती थी। चैतन्य महाप्रभु आके रोज उनसे झगड़ा करते। अच्छा मुझे ये केले दो, केले के फल भी दो, और कितना दो, कितने में दोगे? देखो मैं तो बहुत सस्ते में बेचता हूं। और वास्तव में वो सस्ते में बेचते थे, वो अन्य दुकानदारों की तरह नहीं थे, तो बहुत सस्ते में बेचते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके साथ चर्चा करते, वाद करना शुरू करते, ये तो बहुत महंगा हो गया, मुझे इसे आधा में देना। अरे आधे में दूंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दे दो दे दो दे दो। एक घंटा लगातार वाद चलता था, पूरा एक घंटा बर्बाद करते थे। बर्बाद तो नहीं है, तो भगवान है इसलिए बर्बाद नहीं कह सकते, लेकिन साधारण दृष्टि से कहा जाए तो। और फिर कभी कभी बीच में निमाय पंडित क्रोधित हो जाते थे, और तब श्रीधर थोड़ा घबरा जाते कि ये नौजवान ब्राह्मण है, थोड़ा हृष्ट पुष्ट है, कहीं क्रोध होके मुझे मार न डाले। ठीक है ले लो क्या लेना, कितने में लेना, चलो ले लो, केला ले लो, केले के पत्ते ले लो, सब ले लो, जो ले लो। और फिर महाप्रभु कहा ठीक है अभी अगली बार भी अच्छा माल देना, मैं कल आऊंगा। तो फिर चले जाते थे, और हर रोज की कथा थी। कभी कभी बिना पैसे दिए उठा के लेके जाते थे। तो ऐसे लीलाएं चलती थी। और एक बार उन्होंने आके श्रीधर से कहा, श्रीधर तुम तो बहुत अमीर हो, मैं जानता हूं, बहुत धनी हो तुम, मैं और धनी, देखो मेरा घर कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक ऐसा धन है, मैं एक दिन सबके सामने सारे रहस्य को खोल दूंगा, अभी नहीं, अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम हो बहुत धनी। और फिर कभी कभी चैतन्य महाप्रभु श्रीधर खोला बच्चा से कहते कि श्रीधर तुम इतना कमाते हो, क्या करते हो अपने पैसे से? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, इतना कम कमाता हूं मैं, और जो भी कमाता हूं 50% गंगा जी के पूजा में इस्तेमाल करता हूं। गंगा जी? अरे गंगा तो मेरे चरणों से उत्पन्न हुई है। अरे विष्णु 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 क्या बोलते हो हे ब्राह्मण, ऐसे बोलना ठीक नहीं तुम्हारे लिए। श्रीधर तो नहीं जानते थे ना कि ये भगवान है, ये श्री कृष्ण स्वयं है, श्रीधर तो नहीं जानते थे बेचारे। वो तो केवल यही सोचते थे कि ये कोई ब्राह्मण का पुत्र है, और वो तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए थे खोला बेचा, इसलिए उन्होंने सम्मान किया कि ब्राह्मण है कह के। फिर महाप्रभु कहते अरे श्रीधर तुम नहीं जानते, बोलो मैं कौन हूं, पता है मैं तो आप तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो विष्णु के समान है, लेकिन आप कहेंगे कि गंगा जी आपके चरणों से निकलती है तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु बार बार छेड़ते थे उनको। और जब महाप्रकाश लीला हुई, चैतन्य महाप्रभु ने अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया और सारे भक्तों को बुलाया और कहा कि अपने जो भी वांछाएं हैं, जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं उनको बोलो, मैं पूर्ण करूंगा। तो अलग अलग भक्त आए, सब लोग ने अपनी अपनी चीजें मांगी। तो किसी ने कहा नहीं मेरे पिताजी भक्त नहीं, उनको भक्त बनाइए, मेरी पत्नी भक्त नहीं है, मेरे पति भक्त नहीं है, ये है वो है, सारी इच्छाएं महाप्रभु ने पूरी कर दी। फिर श्रीधर आए, अरे श्रीधर आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ दिला दूंगा, तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति, ये भोग वो भोग सब कुछ दिला दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो श्रीधर ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चीज चाहिए कि जन्म जन्मांतर आप हर रोज मेरे साथ आके केले के लिए झगड़ा करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, केवल आप इतना करेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रीधर को समझ में नहीं आता था कि ये नौजवान लड़का आके इतना तंग करता है मुझे, इतना हैरान करता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना आनंद क्यों आ रहा है इसमें, कुछ विचित्र बात है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या है इस लड़के में, क्या है आकर्षक बात है, मुझे पता नहीं मैं कितना इस लड़के से प्रेम करता हूं, इतना आकर्षित कैसे हो रहा हूं इसके प्रति। तो इसलिए जब उनको पता चला कि ये साक्षात भगवान है, फिर उन्होंने कहा कि बस बारंबार जन्म जन्मांतर आप ऐसे ही करते रहना, मैं केले बेचूं और तुम आप आके झगड़ा करना, मेरे से छीन लेना मेरे केले, बस। तो भगवान केवल छीनते नहीं है, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, अच्छा बहुत देते हैं। जब भगवान को लेना है कोई चीज हमसे, तो हमारे दो हाथ काफी नहीं होते हैं रोकने के लिए, अगर भगवान को छीनना चाहे तो, और भगवान को देना चाहे तो फिर भी दो हाथ हमारे काफी नहीं है देने के लिए जो भगवान देना चाहते हैं। तो इसलिए श्रीधर खोला बेचा और भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे तो उनकी ये लीला हुई। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ये कथा बता रहे हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भक्त जो है वो भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहता है, केवल भगवान की निरंतर सेवा चाहता है बस। और आगे नारद पंचरात्र में ये भी बताया गया है, क्या बताया गया है पढ़िए।
जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली, अगर धर्म अर्थ काम तथा पांच प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता।
इस प्रकार बस, तो इन चीजों की परवाह रंच मात्र भी, लेश मात्र भी उसके हृदय में इच्छा नहीं होती है। अच्छा आगे पढ़िए फिर।
इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उनका अनुसरण करती हैं, ठीक इसी तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। دوسرے شبدوں میں شدھ بھکت کو کسی پرکار کے سکھ کا ابھاؤ نہیں کرتا, وہ شری کرشن کی سیوا کہتے کچھ بھی نہیں چاہتا, کنتو یعنی کداچے اس کے من میں کوئی انہیں اچھا اٹھتی ہے تو بھگوان بھکت کے مانگے بنا اسے پوری کر دیتے.
تو یہ رانی اور داسی کا جو ادھارن ہے, جو یہ اپما ہے, بہت اچھی بات ہے. بلوا منگل ٹھاکر بھی کہتے ہیں, بھکتستوئی استھرترا بھگوان یدی سیاد, وہ کہتے ہیں کہ ہے پربھو, اگر میں جب میں آپ کی بھکتی میں استھرتا سے استھت ہو جاتا ہوں, بھکتستوئی استھرترا بھگوان یدی سیاد, اگر میں ایسے کروں استھر ہو جاؤں, دیویر نہ فلتی دیویا کشور مورتی ہی, تو میں آپ کو سب جگہ میں دیکھ پاتا ہوں, انوبھو کر پاتا ہوں. کشور مورتی, آپ کی آپ کا جو کشور روپ ہے, سندر روپ ہے, اس کو میں سدیو دیکھتا ہوں. مکتی ہی سویم مکلتانجلی سیوتے سمان, مکتی سویم مکلتانجلی, مکلتانجلی مطلب کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے پرانجلی مدرا میں. مکتی دیوی سوئم ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہیں, سیوتے اسمان, کہ میں آپ کے سیوا میں حاضر ہوں, بھکت کے سامنے مکتی دیوی کھڑی ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ مجھے سویکار کیجئے. اور مکتی دیوی کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ دھرم ارتھ کام گتیا سمیا پرتیکشا, کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پرتیکشا کر رہے ہیں مکتی دیوی کے ساتھ ساتھ, ہاتھ جوڑ کے بھکت کے دوار پہ کھڑے ہیں. مکتی دیوی ہیں, دھرم ارتھ کام موکش سب کھڑے ہیں وہاں پر ہاتھ جوڑ کے کہ ہمیں بھی تھوڑا ستھان دیجیے آپ کے جیون میں. اور بھکت کیا کہتا ہے؟ نہیں, میرے پاس سمے نہیں آپ کے لیے, کھما کیجیے, یہاں سے چلے جائیے آپ, ہمیں کوئی ستھان ہے آپ کے لیے, ہمارے ہردے میں کوئی ستھان نہیں, آپ یہاں سے جائیے. تو یہ ہے بھکت کا ستھان. تو یہاں تک کہ موکش ہے یہ بھی بہت تچھ مانتے ہیں بھگوان کے بھکت. جہاں پہ بھکتی ہے, بھکتی ایک مہارانی کی طرح ہے, تو ان کے پوچھ پیچھے پیچھے یہ جو مکتی ہے اور انیہ جتنے بھی سنسار کی چیز, یہ داسیاں ہیں, یہ پیچھے 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 آتی ہیں. تو یہ اپما ہے, لیکن بھکت یہ سب نہیں چاہتا. ہاں, اچھا پرشن ہے کہ ہم کون سے موکش کی بات کرتے ہیں, جو سایوج مکتی کی بات ہے یا ان چار پرکار کی مکتیوں کی بات ہے. تو وشیش کر کے پانچویں پرکار کی مکتی جو سایوج ہے یا ایکتو ہے جس کو کہتے ہیں کیولیہ مکتی, اس کو اس کے بارے میں وشیش روپ سے بھکت اس پرکار کی مکتی کو تچھ مانتا ہے. لیکن جیسے ہم کل بھی چرچا کر رہے تھے, یہ دیمانم نہ گھرنتی مت سیونم جناح, یہ شلوک یاد ہے آپ کو, کل چرچا کی تھی, کنہوں نے کہا تھا یہ شلوک؟ کپل دیو, نہیں کپل دیو نے سوئم کہا تھا. کیا کہا تھا؟ نہیں چاہتے ہیں سالو کے سارشتی سامپیہ سایوجی کتپم دیمانم نہ گرننتی مت سیونم جناح, کہ اگر میرے بھکتوں کو میں یہ پانچوں پرکار کی مکتیاں بھی پردان کروں, میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں, لیکن بھکت نہیں چاہتا ہے. نہ گرننتی مت سیونم, بنا مت سیونم جناح, اگر اسے میری سیوا کرنے کا موقع نہیں ملے تو پانچوں پرکار کی مکتیاں بھی اسے نہیں چاہیے. پانچویں پرکار کی جو مکتی ہے ایکتو کی, وہ تو کبھی چاہتا ہے ہی نہیں, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پرنتو پہلے پرکار کے چار مکتیاں وہ بھکت کیول اس سمے سویکار کرے گا جبکہ وہ بھگوان کی سیوا اور اچھی طرح سے کر پائے گا, انیتھا ان کو بھی نہیں سویکار کرے گا. اگر بھگوان کی سیوا, بھگوان کی اچھا ایسی ہے کہ آپ ابھی بھوتک جگت میں رہو اور میری سیوا کرو, تو بھکت تیار ہے. अगर भगवान चाहेंगे कि भक्त नरक में जाए और नरक में जाके नरक के निवासियों को प्रचार करे तो वैसे ही करेगा। भक्त नहीं कहेगा मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, भक्त के लिए वही स्थान ठीक है।
सायुज्य नहीं चाहिए,
सायुज्य
बाकी सब चार अगर सेवा मिले तो मिले।
हाँ, अगर सेवा के लिए अनुकूल है तो फिर वो स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से कहा जाता है कि ये मोक्ष लघुताकृत, तो ये तीसरा लक्षण भक्ति का, ठीक है। तो तीन लक्षणों की चर्चा हो गई और चौथा है, चौथा कौन सा है बताइए लक्षण, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब क्या है, दुर्लभ मतलब दुर्लभ, लभ लभते मतलब प्राप्त करना, लभ मतलब प्राप्त होना और दुर मतलब जो प्राप्त नहीं होता, मतलब जो बहुत ही विरला प्राप्त होता है, मुश्किल से प्राप्त होता है, और सुदुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, उल्टा जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है उसको सुदुर्लभ कहते हैं। केवल साधारण दृष्टि से दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है ये भक्ति, ठीक है। ये है सुदुर्लभा। तो वास्तव में प्रभुपाद जी यहां इसका वर्णन करते हैं और ऐसा वर्णन, इस वर्णन को पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि रूप गोस्वामी पाद ने दो कारण दिए हैं जिसकी वजह से भक्ति सुदुर्लभा है। पहला कारण यह है कि अगर कोई साधक इस साधन भक्ति को करता है बिना कोई भौतिक हेतु के, तो फिर भी वो इस विशेष भाव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है, क्यों सुदुर्लभ है, कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी व्यक्ति को भौतिक भोग प्रदान करते हैं, मुक्ति भी प्रदान करते हैं, परंतु किसी को अपनी भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते भगवान? फिर भगवान उस भक्त के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। एक व्यापारी जो है ना, वो अपने दुकान में जो माल है वो बेचेगा, लेकिन अपने आप को बेचेगा क्या? बेचेगा कभी? वो अपने आप को नहीं बेचेगा। जब दुकान का माल खत्म हो जाएगा दुकान बंद कर लेगा। तो इसलिए जो है भगवान के दुकान में बहुत कुछ है, तरह तरह के भोग साधन है, सब उपलब्ध है भगवान के पास। मुक्ति चाहिए, काम चाहिए, अर्थ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह तरह की चीजें हैं भगवान के सुपरमार्केट में, और ग्राहक तो बहुत है, सब लोग चाहते हैं तरह तरह की चीजें, और भगवान देते हैं, जैसी इच्छा उनको मिल जाता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति आता है कि हे भगवान मुझे आप चाहिए, आपके सुपरमार्केट की कोई चीजें नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठहरो भाई ठहरो, इतने आसानी से नहीं। तो भगवान जानते हैं कि एक बार मैंने इसको भक्ति दे दी तो क्या होगा, फिर मैं इसके हवाले हो गया, फिर मेरे लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो भगवान बहुत सोच के बाद देते हैं। तो दो कारण है सुदुर्लभा के लिए, क्या कारण बताइए? पहला कारण क्या है? भक्ति सुदुर्लभा दो कारण के लिए है। पहला कारण भौतिक इच्छा से रहित भी अगर कोई भक्ति करे, मतलब भगवान के साधन क्रिया करे, भजन क्रिया करे, फिर भी क्या वो भाव जो है श्रेष्ठ स्तर की भक्ति जो है वो प्राप्त नहीं होती, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। और दूसरी बात नहीं, दूसरा कारण भगवान इतनी आसानी से भक्ति भाव भक्ति नहीं देते हैं अपने भक्तों को या किसी को, किसी साधक को। क्यों नहीं देते हैं? भगवान फिर उसके वश में आ जाते हैं उस व्यक्ति के, तो अपने आप को बेच डालने के पहले कोई आदमी तो सोचेगा तो सही ना 10 बार। इतनी आसानी से अपने आप को नहीं बेचेगा, इसलिए भगवान बहुत सोचते हैं। पहला वाला कारण कि ऐसा नहीं है कि केवल हम साधन करेंगे और हमें मिल जाएगा, नहीं, साधन हमारी साधना करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें बस ऑटोमेटिक मिल जाना है, हमने किया इसलिए मिलेगा, नहीं, ये कोई यांत्रिक चीज नहीं है कि आपको मिलना ही चाहिए, ऐसे साधन किया तो आपको मिल गया। आप रेलवे काउंटर पर गए, इतने रुपए दिए, टिकट खरीदा, चलो बैठे चले, नहीं, करने के बाद भी आपको शायद बहुत समय लगे। और इसलिए आगे उदाहरण देते हैं, इसके बाद में शिवजी सती को कहते हैं एक बात, और उसमें ये जो पहला कारण है उसका स्पष्टीकरण किया गया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर इस भाग में मिलेगा। कोई पढ़ेंगे शिवजी सती को क्या कहते हैं?
हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्ण कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक पहुंच सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप केवल ज्ञान के पथ पे चल रहे हैं, दार्शनिक चिंतन के माध्यम से आप आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, या आप कर्मकांड के दृष्टि मार्ग में भी चल रहे हैं, फिर भी ऐसे मार्गों से आप कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये साधन जो हमने कहा कि साधन से यांत्रिक रूप से करने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये कौन से साधन है? ये इन प्रकार के साधन हैं, जिनको करने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति प्राप्त करने के लिए उचित क्या है, ये आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद कहते हैं भागवत में, क्या कहते हैं जरा पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा पढ़िएगा।
केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कर्मों से पूरी तरह मुक्त होता है।
बहुत अच्छा। तो ये पहला कारण जो है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है और वो अपना साधन कर रहा है, वो भक्ति के साधन नहीं है, योग मार्ग के, ज्ञान मार्ग के इत्यादि, उसको नहीं मिलेगा, उसको भक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि कोई शुद्ध भक्त के चरण धूलि का स्पर्श नहीं होगा तब तक, अर्थात शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए, तब जाकर वो भक्ति में आ सकता है। कौन सा श्लोक है ये? ना 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 ना, जो प्रहलाद कह रहे हैं भागवत में, मही यसाम पाद रजोभिषेकम। महान भक्तों के चरण धूलि, जब तक कि महान भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते और न ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि शुद्ध भक्त ही बहुत दुर्लभ होते हैं, शुद्ध भक्तों की कृपा बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए भक्ति दुर्लभ होती है, सुदुर्लभा है। क्योंकि साधारण चीजों से, साधारण कार्यों से, साधना से भी, जो ज्ञान की साधना है, योग की साधना है आदि, कर्म की साधना है, इससे भक्ति प्राप्त नहीं होती। केवल शुद्ध भक्तों के चरण धूलि या उनकी कृपा प्राप्त करने मात्र से ये संभव है। केवल भगवान श्री कृष्ण भक्ति को प्रदान कर सकते हैं और वो अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से करते हैं। तो दूसरा कारण क्या था कि भगवान आसानी से भक्ति प्रदान करते नहीं है। तो पहला पॉइंट ये था कि केवल भगवान ही दे सकते हैं और दूसरे बात कि भगवान आसानी से नहीं देते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध का उदाहरण है। नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर से,
हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी प्रकार से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेही हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेशवान हो। हिरायन, आप इतने भाग्यवान हैं क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति को सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के क्रीत दास बन जाते हैं।
क्रीत दास मतलब क्या है? खरीदे हुए सेवक बन जाते हैं। बहुत भारी शब्द है नहीं? भगवान पूर्णतया अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं। तो ये जो श्लोक है जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि देखिए तो सही कि भगवान कैसे आपके सामने बिके हुए हैं। कैसे बिके हुए हैं? देखिए तो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। वो आपके दूत बनते हैं, आपके सेवक बनते हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके साथ में रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते आपके साथ कर रहे हैं सब कुछ। तो इतनी निकटता, इतना प्रेम जो भगवान दिखा रहे हैं आपके प्रति, इसे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है बिल्कुल आपके हवाले हो गए हैं। और जो भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है वो अन्य लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, सपने में भी। क्योंकि पांडव कौन है? भगवान के विशेष भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भगवान ने इस प्रकार से अपने आप को उनके हवाले कर दिया और तरह तरह की सेवाएं उनकी की। तो ऐसे पांडव जैसे भक्तों को पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्योंकि भगवान ऐसे अपने आप को हवाले करते हैं अपने भक्तों के प्रति, इसलिए वो आसानी से भक्ति नहीं देते। क्योंकि अगर देंगे तो उनको अपने आप को बेच डालना पड़ेगा। ठीक है। शुद्ध भक्त हैं सब, नित्य रूप से वहीं पर स्थित हैं। केवल हम लोग हैं जो यहाँ पर हैं। जैसे जेल के अंदर कोई लोग भाग बात कर रहे हैं, कि बाहर शहर में लोग कितने आराम से रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि वो शहर में है। अरे कुछ नहीं किया उन्होंने, वो तो हैं, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग ने कुछ किया इसलिए हम यहां आए हैं, हम लोग जेल के अंदर हैं। तो वो तो अपने जगह में स्थित है, पहले से अनादिकाल से स्थित है, वो तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के संग में सानिध्य में दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहां हैं। क्यों है? क्योंकि हमने चयन किया गलत, भगवान की सेवा और माया की सेवा, हमने माया का सेवा चुन लिया तो यहां पर आ गए। वो लोग अपनी जगह में ठीक है, पहले से ही वही है, वह वहां है, वो अनादिकाल से, कोई शुरुआत नहीं उनकी वहां रहने के लिए। तो हम यहां क्यों आए हैं, ये कारण प्रश्न ये है कि हम लोग यहाँ क्यों आए ना?
वो सुदूर मतलब 75% उनके पास है,
हाँ, सुदुर्लभ ये भौतिक जगत के लिए है, भगवान तो वहां की बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात कर रहे हैं। वहां तो सभी लोग शत प्रतिशत, वहां तो सुदुर्लभ नहीं है, वहां तो सभी लोग भागते हैं, सारे जीव भागते हैं वहां पर, यह भौतिक सृष्टि की बात हो रही है। भौतिक सृष्टि में ये बहुत ही दुर्लभ है।
तो ये चैन करने का कारण
अब ये तो नहीं पता, अब कब कैसे हुआ, कब हम आए, कैसे गिरे। प्रभुपाद जी कहते थे कैसे आई यहां पर इसके बारे में चिंता नहीं करो, वापस जाने की चिंता करो, वापस जाए कैसे। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो नदी में गिर पड़ा, तो एक नौके में लोग गए उसको बचाने के लिए, उसके पास पहुंच गई नौका, नौका पास पहुंच गया और नौके के अंदर से एक व्यक्ति ने हाथ बाहर किया कि चलो हाथ पकड़ो और आओ। नहीं, पहले ये बताओ मुझे ऊपर से धक्का मारा किसने, किसने मुझे किया, कौन है वो, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है। अरे ये सब छोड़ो, पहले आओ ऊपर, फिर बाद की बात, बाद में तुम डूब रहे हो है ना, पानी पी रहे हो, सब छोड़ो आओ, है ना। तो हमारे भौतिक जगत में यही दशा है, हम लोग सब डूब रहे हैं। तो कैसे आए हम, बहुत मुश्किल कहना, लेकिन जब आए हैं, अब जाना है वापस भगवान के धाम में, यह निश्चित करना है।
बाकी सब चीजों की चर्चा है, सिद्धांत की, हर चीज की चर्चा है, इस जो वास्तविक और परिस्थिति किस कारण से वो उसकी चर्चा नहीं है,
है ना। यया सम्मोहित हो जीव, सम्मोहित हो गया जीव, जब से जीव ने ये गलत इच्छा की, क्योंकि इच्छा करना जो है ये जीव का स्वभाव है, इच्छा करने की स्वतंत्रता जब होती है जीव को, इसका मतलब है कि जीव कभी सही इच्छा कर सकता है, कभी गलत इच्छा। सही इच्छा करे तो भगवान की भक्ति में स्थित रहेगा, गलत करेगा तो फिर माया की सेवा में आ जाएगा। तो हम सबने ये गलती कर ली एक बार, कहां की, कैसे की, ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु की। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करनी है, दोबारा नहीं करना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान बताते हैं एक बार कोई चले जाएगा भगवान मेरे धाम में, फिर लौट के नहीं आएगा। अब वापस वहां जब जाएंगे फिर नहीं आएंगे। वो कब उत्तर मिलेगा उसको, नौके में आने के बाद,
जब
समय लगता है, फिर भी ये भी तुरंत ही हो जाता है, हमारे ऊपर है, अगर हम समय लेंगे तो समय लगेगा। जब हमें कोई पकड़ने, हम नौके के नीचे चले गए हम उस पार चले गए, इस पार चले गए, वो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भक्त लोग हमारे पीछे आ रहे, आओ आओ सत्संग में आओ, जप करो, ये करो, फिर लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं। वास्तव में इतने लंबे जीवन की अवधि में, हम इतने करोड़ों साल यहां भौतिक जगत में रहे हैं, उसमें एक जन्म, दो जन्म, दस जन्म क्या है, कुछ भी नहीं है, एक क्षण के बराबर है बस। तो ये तुरंत उठाने की ही जैसे हो गई बात। हमें लगता है कि इतने साल लग गए, लेकिन शाश्वत काल के दृष्टि से देखा जाए बस एक बार आंख बंद करने के खोलने के बराबर है बस। ठीक है ना। हुई ना कि शुद्ध भक्त की कृपा के बिना ही, बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये हुआ, ये वो सुदुर्लभा भक्ति है दो कारण से। एक कि बहुत से साधन हम करेंगे लेकिन उसमें हमारा लगाव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, तो वो आसक्ति के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और वो आसक्ति केवल अपने प्रयास से नहीं मिल सकता, वो शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि कृष्ण इसको इतनी आसानी से नहीं देते हैं, भक्ति को, भाव भक्ति को। तो पांचवा कारण है सांद्रानंद विशेषात्मा, और छठा है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। तो भक्ति के लक्षण जो है चार खत्म हो गए। इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए भक्ति में, कि हम इसी जीवन के अंत में चले जाएं भगवत धाम। ऐसा नहीं कि हम इंतजार करें कि चलो अगले जीवन में भी चांस है, उसके बाद भी चांस है अभी। हाँ, ये तो सही है तो सही, परंतु हम क्यों इंतजार करें। जैसे एक विद्यार्थी है, वो जब एक कक्षा में प्रवेश करता है तो एक साल में उसको खत्म कर लेना चाहिए ना। अगर वो सोचेगा फेल भी हो जाऊंगा तो दूसरे साल में भी उसी कक्षा में परीक्षा दे सकता हूं, है ना। तो ऐसा सोचेगा तो अवश्य कर पाएगा, कॉलेज जो है उसको अवसर देगा कि ठीक है एक साल ड्रॉप कर लो, फिर से तुम परीक्षा दे दो। लेकिन अच्छा विद्यार्थी सोचेगा क्यों एक साल बर्बाद करें। उसी तरह से जो मनुष्य जीवन में प्राप्त, मनुष्य जीवन में भक्ति को प्राप्त करते हैं लोग, वो सोचते हैं मनुष्य जीवन को बर्बाद क्यों करें, ये जीवन तो मिल गया है, अभी इसी जीवन में हमें भगवान के धाम में जाना है, अभी और अगले जीवन के लिए इंतजार नहीं करना है। लेकिन अगर हो भी जाए, इस जीवन में किसी कारण से कर भी नहीं पाए पूर्ण हमारी भक्ति को, तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, कौन सा श्लोक है, वो तो है, लेकिन नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्, सबसे बड़ा भय कि अगले जन्म में क्या होगा, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें ऐसे एक वातावरण में जन्म देंगे जहां हम भक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे, भक्तों के घर में, तो हमें कोई भय नहीं। ये भगवान की गारंटी है, भगवान का वचन है, ठीक है।
जैसे शुद्ध भक्त की कृपा से भक्ति मिलती है, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो जैसे पात्र देख कर कृपा करते हैं या कोई भी जैसे उनसे प्रार्थना करे कहते हैं मैं बहुत तीव्र शिक्षा रखे हालांकि उससे प्रयास नहीं हो पा रहा है मान लीजिए भक्ति के लिए जो स्मरण है वो करना है लेकिन फिर भी जैसे बहुत लोग उत्साही होते हैं और बहुत प्रयास करते हैं भक्ति के लिए लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो स्मरण करता है भगवान का लेकिन शारीरिक रूप से भगवान की सेवा में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है तो वो अगर भक्त से प्रार्थना करता है जो शुद्ध भक्त है तो क्या वो भक्त उसके इतने से मतलब ज्यादा उठापटक वाली सेवा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मन से भगवान की सेवा करना चाहता है स्मरण करता है और बहुत हृदय से तीव्रतम इच्छा है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो या भगवान की सेवा मुझे मिले तो क्या ऐसे व्यक्ति पर शुद्ध भक्त कृपा करते हैं या उसमें वो देखना चाहते हैं कि इसमें योग्यता है या नहीं है या मैं इसको कृपा दू या नहीं दू ऐसा भी कुछ रहता है या वो शुद्ध भक्त कृपा कर देते हैं
वैसे हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं कृपा के योग्य नहीं हूं इस दृष्टि से कि मेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है परंतु नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या प्रार्थना की मो सम पतित प्रभु न पाइबे आर कि मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति पापी व्यक्ति आप नहीं पाएंगे इसलिए आपका अवतार हुआ है पतित पावन पतित पावन हेतु तब अवतार तो पतितों का पावन करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है इसलिए मैं पहला कैंडिडेट हूं आपके सामने पतित लोगों का नंबर जब आता है तो मैं पहला नंबर हूं इसलिए मेरा भी उद्धार हो जाएगा ऐसे मैं आशा रखता हूं तो ये हमारी भावना भी रहनी चाहिए नरोत्तम दास ठाकुर के पद चिन्हों में चलते हुए तो शुद्ध भक्त अवश्य कृपा करते हैं और विशेष करके जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है हृदय से बहुत ही प्रयत्न कर रहा है तो अवश्य कृपा प्राप्त होती है ये हमारे हृदय की बात है हृदय से अगर हम सिंसियर रहेंगे भक्ति मार्ग के लिए तो भगवान सारे साधन जोड़ देंगे लेकिन हृदय में हम अलग अलग कामनाएं रखेंगे कि नहीं भक्ति के साथ ये भी करना है या छल कपट की भावना होगी तो फिर कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती है कृपा उन लोगों को आसानी से मिल जाती है जो सरल हैं और जो शरणागत हैं जितने शरणागत हैं उतने ज्यादा कृपा मिल जाती है ठीक है हमने कहा पहली बात यहां दो प्रकार के साधन की बात है एक है जो भक्ति नहीं है ऐसे चीजों का साधन जैसे ज्ञान मार्ग योग मार्ग कर्म मार्ग ऐसे चीजों की साधना करने से तो भक्ति मिलेगी ही नहीं ये तो निश्चित है लेकिन अगर भक्ति के साधन भी हम कर रहे हो परंतु आसक्ति नहीं है और वो आसक्ति हमारे प्रयास से केवल नहीं मिल सकता किन के प्रयास से मिलेगा वैष्णवों के चरण धूलि से वैष्णवों के कृपा से तब जाकर आसक्ति मिलेगी ठीक है तो ये पहला कारण है दूसरा कारण यह कि आसक्ति भी हो अगर फिर भी भगवान इतने आसानी से भक्ति नहीं देंगे क्यों क्योंकि वो अपने आप को इतने आसानी से अन्यों के हवाले नहीं कर देते हैं मतलब जहां भक्ति नहीं है वहां ठीक है शुद्ध भक्तों की चरण धूली मतलब वो शुद्ध भक्तों की चरण धूली है या नहीं है
उनके चरण यहाँ रखे हुए हैं वो धूलि हम ग्रहण कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ और इसके अंदर
इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके आदेश का पालन करना है ना। ठीक है, चरण धूलि लेना ये भी तो बहुत पावन वस्तु है, ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी लेकर अपने आप लगाते रहने से बजाय ऐसे ही अच्छा है कि हम उनके आदेश का पालन करें। ये है वास्तव में चरण धूलि को प्राप्त करना, जो वो चाहते हैं वो हम करें, जो उनके आदेश हैं उनकी इच्छाएं हैं वो हम करें।
संकेत में नहीं हो, संकेत में नहीं।
दूसरे अध्याय का
ये शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद और शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद, इसमें कोई फर्क है?
नहीं, आशीर्वाद तो वही होता है, उनकी कृपा प्राप्त करना। ठीक है,
जो सबसे पहले हम भगवतों का श्लोक हो गया था, आता ही सबसे पहले कृष्णा वाला उनका सुख जो शुरू किया, वो भगवतों का श्लोक
कौन सा? ये नहीं, रविन दाक्ष विमुक्त मानी ना, वही वाला ये नहीं,
सबसे
जो आपने बताया था वो है यज्ञ रमिन दाक्ष विमुक्त मानिनस, वही है ना, जो अविशुद्ध बुद्ध है वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत। अच्छा ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, गौर प्रेमानंदे।